आयु लक्षित के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी। लक्षित और आयु की थोड़ी देर बातें हुई थी और उन बातों को सनम ने सुन लिया था। लक्षित ने आयु के जाने के बाद कुछ कहा था, जिसे सुनने के बाद सनम को ये लगा कि लक्षित आयु को पसंद करता है। आयु और लक्षित दोनों ही पहल नहीं करेंगे, ये सोचकर सनम ने उनके बीच सब ठीक करने का सोचा। लक्षित आगे बढ़ रहा था, तभी सनम उसके पीछे तेज कदमों से चलकर आई और उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाते हुए कहा, रुकिए डॉक्टर लक्षित। हॉस्पिटल में लक्षित को कोई उसके नाम से बुलाता था तो ये उसे पसंद नहीं था। उसके लक्षित कहने पर लक्षित ने उसे घूर कर देखा और फिर सख्त आवाज़ में कहा, डॉक्टर सनम, आई एम योर सीनियर डॉक्टर। मैंने आपको कितनी बात कहा है कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाइए। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्यों ना आपके केबिन में चले, सनम ने सीधे सीधे कहा। लक्षित को लगा उसकी बात किसी मेडिकल इशू को लेकर होगी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कह दी थी। लक्षित और सनम लक्षित के केबिन में आ गए। वहाँ आते ही लक्षित अपनी चेयर पर बैठा और सनम से पूछा, फाइल कहाँ है? कौन सी फाइल? सनम ने कंधे उचका कर पूछा। वही फाइल जिस पर तुम मुझसे डिस्कस करना चाहती हो। तो मुझे इस रूम में इसीलिए लेकर आई हो ना, क्योंकि तुम्हें किसी केस पर डिस्कस करना है, लक्षित ने जवाब दिया। उसे हर बार की तरह सिर्फ काम से ही मतलब होता था। ये देखकर सनम के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसी लहजे में कहा, मैं यहाँ किसी केस पर डिस्कस करने नहीं आई, बल्कि आयु के बारे में बात करने आई थी। आप उसे लाइक करते हो ना, बस बता नहीं पाते और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे हॉस्पिटल में सबसे खूबसूरत है, कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। आपको भी अच्छी लगती है ना वो? सनम अपनी नादानी में कुछ भी बोले जा रही थी, जबकि उसकी बातें सुनकर लक्षित उसे बुरी तरह घूर रहा था। लक्षित के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और वो सनम पर चिल्लाकर बोला, गेट आउट ऑफ माई केबिन। कल भी तुम दोनों गॉसिप कर रही थी ना मेरे बारे में। तुम दोनों को ही क्लियर कर देता हूँ कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही किसी और डॉक्टर में। आगे से मेरे सामने ये सब बकवास हुई है तो तुम्हें एक्सपेल करवा दूंगा। सनम ने नहीं सोचा था कि लक्षित इतना भड़क जाएगा। वो उसका सीनियर डॉक्टर था, इसलिए वो उससे पंगा भी नहीं ले सकती थी। मामला बिगड़ रहा था, इसलिए सनम जल्दी से बोली, आई एम सॉरी डॉक्टर, वो मैं ये कहने वाली थी कि आयु आपको लाइक करती है, वो कभी कह नहीं पाती, इसलिए मैंने उसकी तरफ से बोल दिया। सनम की बात सुनते ही लक्षित के चेहरे के भाव बदल गए। अचानक ही उसका गुस्सा कन्फ्यूजन में बदल गया। वो हैरानी से बोला, वो मुझे लाइक करती है? अगर ऐसा है तो वो तुम्हारे जरिए ये बात क्यों कहेगी? मुझे नहीं लगता वो इतनी शाय है कि अपनी बात कहने के लिए उसे किसी और की जरूरत पड़े। यही सच है, सनम ने नजरें झुकाकर कहा। ठीक है, फिर कन्फर्म कर लेते हैं, लक्षित सिर हिलाकर बोला। वो केबिन से बाहर निकलने लगा और उसने सनम से कहा, मेरे साथ चलो। सनम की हर एक बात उल्टी पड़ती जा रही थी। पहले लक्षित उस पर चिल्लाया और बाद में वो आयु से कन्फर्म करने के लिए जा रहा था। प्रॉब्लम की बात ये थी कि वो सनम को अपने साथ लेकर जा रहा था। लक्षित के बाद अब आयु भी सनम पर बुरी तरह गुस्सा करने वाली थी। सनम के पास कोई रास्ता भी नहीं था, वो लक्षित के पीछे पीछे चल रही थी। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, सही कहा है किसी ने, किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। क्या जरूरत इन दोनों के बीच में आने की? आयु तो मेरी जान ले लेगी, ये तो फिर भी मुझ पर सिर्फ गुस्सा करके छोड़ रहा है। हे भगवान, प्लीज बचाए ना। आयु अपने केबिन में किसी केस फाइल को पढ़ रही थी। वो अकेली थी। उसने देखा अचानक लक्षित उसके केबिन में आया, उसके साथ सनम भी थी। आयु हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। तभी लक्षित बोला, डॉक्टर ओबेरॉय, तुम मुझे लाइक करती हो, ये बात कहने के लिए तुम्हें मेरी असिस्टेंट डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लिफ्ट ऑफर करने का तुमने कुछ ज्यादा ही गलत मतलब निकाल लिया। वो इसलिए ऑफर करता हूँ ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो। आसपास के किसी भी पड़ोसी को जाकर पूछ लेना, कहीं भी एक जगह जाना होता है तो मैं उनसे भी लिफ्ट ले लेता हूँ। लक्षित की बातें सुनने के बाद आयु को समझते देर नहीं लगी क्या हुआ होगा। उसने लक्षित के पीछे खड़ी सनम की तरफ देखा, जो हाथ जोड़कर उसे सॉरी कह रही थी। आयु को सनम पर गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज्यादा गुस्सा लक्षित पर। आयु ने लक्षित की तरफ घूरते हुए देखा और तिरछा मुस्कुरा कर कहा, क्या लगता है डॉक्टर जैन, कभी मेरे किसी भी जेस्चर से आपको लगा कि मैं आपको पसंद करती हूँ? हमने तो ठीक से बात भी नहीं की, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड तो यही कह रही है, लक्षित ने कंधे उचकाकर कहा। आयु का गुस्सा बढ़ रहा था और वो शांति से काम नहीं ले पा रही थी। वो लक्षित के पास आई और उस पर चिल्लाकर बोली, दफा हो जाओ मेरे केबिन से, तुम तो क्या मुझे दुनिया के हर लड़के से चिढ़ है, वो प्यार के लायक ही नहीं होते हैं। अब मेरी बातों से तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुम में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुम हो या नहीं हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी तुम्हारे एनवायरमेंट लवर होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और ना तुम्हारी लिफ्ट ऑफर करने से। अरे, तुम तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं तो तुम्हें अपना पड़ोसी भी नहीं मानती। वो तुम ही थे जो रात को गाड़ी में उठाकर मुझे अपने घर पर लेकर गए थे। आयु की बात सुनकर सनम बीच में बोली, क्या डॉक्टर जैन ने तुम्हें टच किया? ये थोड़े अजीब है, काम करते टाइम भी कोई गलती से भी टच कर दे तो चिल्लाने लगते हैं। सनम की बात सुनकर आयु ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्या लगता है डॉक्टर जैन, किसकी हरकतें ये जाहिर करती है कि कौन किसे पसंद करता है? ऐसा कुछ नहीं है, लक्षित ने गुस्से में जवाब दिया, तुम दोनों मेरी ही गॉसिप करती रहती हो, मैंने एक बार खुद क्लीनिंग स्टाफ को भी बात करते सुना था कि डॉक्टर ओबेरॉय डॉक्टर जैन को लाइक करती है। वैसे क्लीनिंग स्टाफ ही नहीं, यहाँ के स्टाफ को भी यही लगता है कि आप दोनों के बीच अफेयर है। डॉक्टर जैन तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करते, तो जाहिर है ना ऐसा लगना, सनम ने बेपरवाही से कहा। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। अब वो और बहस के मूड में नहीं थी। उसने लक्षित और सनम का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी केबिन से निकालने लगी। आयु जैसे ही लक्षित का हाथ पकड़कर बाहर आई, उन्हें देखकर एक डॉक्टर ने कहा, ओ डॉक्टर ओबेरॉय, यू बोथ लुक डेड टुगेदर। वो मुस्कुराता हुआ चला गया। सनम ने फिर आयु और लक्षित की तरफ देखकर कंधे उचका दिए। वो जो कह रही थी वो सच था। उन दोनों से बहस होने के बाद आयु अपने केबिन में चली गई। इस वक्त उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी कि हॉस्पिटल में सब उसे लेकर क्या सोच रहे हैं। मुझे इन सब से दूर जाना है, यहाँ रही तो ये सब मेरा दिमाग खराब कर देंगे। आई नीड अ ब्रेक, आयु ने खुद से कहा और एक हफ्ते की लीव का मेल भेजा। उसकी लीव तुरंत ही एक्सेप्ट हो गई थी क्योंकि पिछले 2 साल में उसने वीकेंड पर भी काम किया था। आयु ने अपना जरूरत का सामान उठाया और फिर वहां से सीधा घर जाने के लिए निकल गई। इस वक्त उसे लक्षित का चेहरा भी नहीं देखना था, इसलिए वो लंदन से भी दूर जाना चाहती थी, कहीं ऐसी जगह जहां उसे कोई ना जानता हो। दरवाजा। हॉस्पिटल में आयु और लक्षित के बीच बहस हो गई थी। सब कुछ सनम की वजह से हुआ था क्योंकि उसने लक्षित को ये कहा था आयु उसे लाइक करती है। लक्षित ने डायरेक्ट आकर आयु से पूछा, फिर उन्हें सनम से पता चला कि हॉस्पिटल के लगभग सभी स्टाफ यही सोचते हैं कि उनके बीच में अफेयर है। आयु के लिए ये सिचुएशन काफी खराब थी, इसलिए वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर आ गई थी।
आरिशा उस वक्त स्कूल में थी। आयु आते ही सीधे ज्ञान जी के पास गई और बोली, दादू मुझे यहाँ नहीं रहना है। देखो मैंने और आरिशा ने अब ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से तुम हमसे अलग होने की बात करो। हो क्या जाता है तुम्हें आजकल, हर छोटी बात पर छोड़ने की बातें करती रहती हो, ज्ञान जी ने उसे डांटते हुए कहा। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और ज्ञान जी को सब कुछ बता दिया जो हॉस्पिटल में हुआ था। उसकी बातें सुनने के बाद ज्ञान जी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ तो दिक्कत क्या है इसमें, मुझे वो लड़का पसंद है, मैं तो खुद तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगने जाने वाला था, तुमने उससे भी लड़ाई कर ली ना। आयु ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा, डिस्गस्टिंग दादू, आप मेरी शादी करवाने का सोच रहे हो? मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मुझे नफरत होती है हर एक शख्स से उस आरफ खुराना की वजह से। चलो तुम्हारे मुंह से उसका नाम तो निकला, वैसे देखने में वो भी काफी हैंडसम है, ज्ञान जी काफी बेपरवाही से बात कर रहे थे। आरव का जिक्र आते ही आयु की आंखें नम हो रही थी। उसने अपने आंखें साफ की और खुद को सख्त करके कहा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, मुझे कहीं बाहर वेकेशन के लिए जाना है, आपको साथ चलना है तो चलिए, वरना मैं आरू को लेकर अकेली चली जाऊंगी। अरे तुम दूसरों का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, इनफैक्ट मैं तो कब से वेट कर रहा था, बहुत दिन हो गए देहरादून नहीं गए, चलो अपने होम टाउन चलते हैं। ज्ञान जी ने जगह का नाम भी बता दिया था। आयु ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इंडिया नहीं जाना है, अगर गलती से भी आरव ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मेरी आरू को मुझसे छीन लेगा, उसकी वजह से ही मैंने आरू का नाम चेंज किया था ताकि गलती से भी वो उसके सामने जाए तो उसे डाउट ना हो कि वो उसी की बेटी है। आयु की बात सुनकर ज्ञान जी ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, शक्ल और आंखों का क्या करोगी, वो तो बिल्कुल उसके जैसे लगते हैं, तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने या उससे दूर रहने से ये सच बदल नहीं जाएगा कि वो आरव खुराना और तुम्हारी बेटी है। बाकी मैं देहरादून ही जाऊँगा, तुम्हें कहीं जाना है तो चली जाना, वो भी अकेले, क्योंकि आरिशा भी मेरे साथ जाएगी। ज्ञान जी ने अपना फैसला सुनाया और वहां से अपने कमरे में जाने लगे। वो जिस लहजे में बात करके गए थे उसे आयु समझ गई थी कि उसके पास ज्ञान जी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल उसे लक्षित और लंदन से दूर होना था, चाहे उसके लिए उसे देहरादून ही क्यों ना जाना पड़े। इसलिए आयु ने इस वक्त उनकी फ्लाइट की टिकट बुक करनी शुरू कर दी थी। शाम के वक्त आरव ऑफिस से घर पहुंचा। आरव ने आर्या को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था और वो इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था। ताराजी ने आर्या को अपने पास बुलाया था लेकिन आरव के मना करने पर आर्या वहाँ नहीं गया, तो रुद्र और सिमरन उससे मिलने के लिए खुराना मेंशन आए हुए थे। जब रुद्र को आर्या से ये पता चला कि आरव ने उसे घर से बाहर निकालने के लिए मना किया है तो वो उस पर गुस्सा हो गया था। जैसे ही आरव घर में घुसा रुद्र ने उसे देखते ही कहा, वैसे तो मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि मैं पिछले 3.5 सालों से की भी नहीं है, लेकिन तुम इस तरह आर्या को हमसे दूर नहीं कर सकते, वो आयु का भी बेटा है और इस वजह से उसका हमसे एक रिश्ता है जिसे तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। रुद्र की बात सुनकर आरव ने कोल्ड वॉइस में कहा, कौन आयु? अच्छा तुम अपनी बहन की बात कर रहे हो जिसे तुम लोगों ने भी सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं और अब उसके बेटे से रिश्ता रखना है। देखा जाए तो तुम्हारी फैमिली और मेरे में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों को उस लड़की से उतनी ही नफरत है। आर्या वहीं बैठा था और उनकी बातें सुन रहा था। सिमरन ने तेज आवाज में कहा, अपने गुस्से में ये मत भूलो कि आर्या भी यहाँ पर बैठा हुआ है। सो वॉट भाभी, आरव ने सिर हिलाकर कहा, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी मॉम इस घर में क्यों नहीं आ सकती। आजकल ये कुछ ज्यादा ही उसके नाम की रटिया गाकर रखता है और ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। कभी सोचा है कि मेरे लिए इसे अकेले संभालना कितना मुश्किल है? ऊपर से आप लोग इसके सामने उल्टी सीधी बातें करते हो तो और मुश्किल हो जाता है। कन्वर्सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं आरव, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी, खासकर आर्या के सामने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट वीक देहरादून घूमने जा रहे हैं दादू के फार्म हाउस पर, और यहीं चाहते हैं कि आर्या हमारे साथ चले, सिमरन ने सख्त आवाज में कहा। आरव ने एक नज़र आर्या की तरफ देखा जो उसे प्लीडिंग आइज से देख रहा था। आरव ने उसकी तरफ देखने के बाद सिमरन की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, आर्या आपके साथ कहीं नहीं जाएगा। आप में से किसी को उससे मिलना है तो मेरे घर आ सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद ये इस घर से बाहर मेरे साथ ही कदम रखेगा। ठीक है, तो फिर आप मुझे देहरादून लेकर चलिए ना डैड, मुझे भी घूमना है, मेरे भी वेकेशन शुरू हो रहे हैं, लेकिन आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आर्या ने बीच में कहा। आर्या की बात सुनकर रुद्र ने तिरछा मुस्कुराते हुए आरव से कहा, ये आर्या का कितना ख्याल रखना है ये आर्या के मुंह से ही पता चल रहा है। इसका छोड़ो, तुम सिमरन आर्या की पैकिंग कर लेना, वो हमारे साथ देहरादून जरूर जाएगा। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आर्या की तरफ देखकर कहा, तुम्हें देहरादून जाना है ना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं। आगे से तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे कहोगे। बोलते हुए आरव आर्या के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे अंदर ले जाने से पहले रुद्र से बोला, ये आरव खुराना का बेटा है और इसे अपनी किसी भी जिद को पूरी करवाने के लिए ओबेरॉय फैमिली के मेंबर से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका बाप इसके लिए सब कुछ कर सकता है। नाउ गेट लॉस्ट। आर्या को लेकर आरव पूरे एटीट्यूड से चला गया। वहीं अब रुद्र को आरव पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सिमरन को लेकर तुरंत वहां से चला गया। गुस्से में ही सही, लेकिन आरव ने आर्या की खुशी के लिए उसे देहरादून ले जाने के लिए हाँ कह दी थी।